भगवान की दया और प्रेम में मुग्ध होकर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जैसे प्यास के समय जल अमृत के समान लगता है, भूख के समय अन्न अमृत के समान लगता है, उत्कट इच्छा होने पर शिक्षा उपदेश की बात अमृत के समान लगती है, धारण भी होती है, इसी प्रकार तीव्र वैराग्य के समय ध्यान अच्छा लगता है। आज ध्यान में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि तीव्र वैराग्य की कमी है। तीव्र वैराग्य की पहचान है कि त्रिलोकी का जो ऐश्वर्य वो धूल के समान मालूम दे। पृथ्वी का ऐश्वर्य तो चीज ही क्या है, वैराग्य एवं उपरति बहुत उच्च कोटि की चीज है। इधर चल करके देखना चाहिए, ध्यान फिर करना नहीं पड़ता, स्वतः ही होता है। पतंजलि महाराज ने कहा, तस्य वाचक प्रणव है तद जपस तदर्थ भावनम। परमात्मा का वाचक है परमात्मा का नाम, और परमात्मा का नाम ले हो तो उसकी भावना करते हुए ले हो। अंत काल में भी यदि नाम ले लिया तो बेड़ा पार है। जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं सुलभ हूं। अब हरदम भगवान का स्मरण वैराग्य के बिना नहीं हो सकता। आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान करें, वो तभी होगा जब संसार से उपरति हो जाए, वैराग्य हो जाए। संसार में राग है तो संसार का ध्यान होगा, इसलिए वैराग्य की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये मामूली चीज नहीं है। हटके त्याग का इतना आदर नहीं है, हट पूर्वक त्याग कर दिया वैराग्य हो गया, इसकी इतनी जरूरत नहीं है जितने वैराग्य के त्याग की है। वैराग्य सभी को अच्छा लगता है, सभी में शोभा देता है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो चाहे कर्मयोगी हो। बिना वैराग्य के चित्त स्थिर नहीं हो सकता। चित्त के स्थिर हुए बिना किसी भी योग की सिद्धि नहीं होती। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, वो इसीलिए चंचल है कि हम वैराग्य पूर्वक साधन भजन नहीं करते। मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग हो नहीं सकता। आप बहुत सी युक्तियां जानते हैं पर आप में वैराग्य नहीं है तो चित्त कैसे ठहरेगा? इसलिए संसार में जो कुछ चीज है वो वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ भोगों से अरुचि। ब्राह्मण है सन्यासी है सब कुछ है पर वैराग्य नहीं है तो शोभा नहीं है। सारे गुण होकर भी यदि लिप्सा है तो वह सब गुण मिट्टी है। सारे गुण क्या काम आए यदि वैराग्य नहीं है तो? एक समय की बात है, दधीचि ऋषि अपने ध्यान में मस्त थे। उनके पास इंद्र आए बैठे रहे। दधीचि ऋषि ने देखा कि इंद्र आए हैं, वे अपने ध्यान से उठे, वैराग्य और उपरति के नशे में चूर थे दधीचि ऋषि। ऋषि ने पूछा आप कैसे आए? इंद्र ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि आप जिस आनंद में स्थित हैं मुझे उसकी शिक्षा दे। दधीचि ऋषि ने कहा हे इंद्र तू इंद्रासन पर जो संसार के सुखों का भोग देखता है भोगों में आनंद का अनुभव करता है वह तो जीव जंतुओं में भी देखा जाता है कुत्ता है सुअर है कुकर है उनमें और तेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं तुझे इसका उपदेश नहीं दे सकता जा तू इसका पात्र नहीं है। इंद्र को क्रोध आ गया उसने कहा जब आप किसी को इसका उपदेश नहीं देंगे अब आप किसी को ये उपदेश नहीं देंगे यदि दे देंगे तो आपका सिर मैं काट दूंगा। दधीचि ऋषि को कोई परवाही नहीं हुई। एक बार अश्विनी कुमार आ गए कि महाराज हम आपकी आज्ञा पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने गए थे अब आपकी क्या आज्ञा है। दधीचि ने कहा कि तुम पात्र हो तुमको मैं ऐसी शिक्षा देना चाहता हूं जिससे तुमको महान आनंद मिले परंतु एक बात है एक समस्या है। क्या? अभी तुम आए उससे पहले इंद्र आया था उसने कह दिया कि ये जो आपके आनंद की जो शिक्षा है किसी को दे दिया तो आपका मस्तक काट दूंगा। अब मैं तुमको उपदेश दूंगा तो इंद्र आकर मेरा मस्तक काट डालेगा और तुम्हें पूरा उपदेश नहीं मिलेगा इसलिए किसी और के पास चले जाओ तो ठीक है। अश्विनी कुमारों ने कहा कोई बात नहीं हम आपका सिर पहले उतार देते हैं और घोड़े का सिर लगा देते हैं जब इंद्र आएगा तो एक बार ही तो सिर काटेगा वो इंद्र काट देगा घोड़े वाला सिर तो ये दूसरा सिर हम लगा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है उपदेश दे दिया इंद्र ने सिर काट दिया अश्विनी कुमारों ने वापस लगा दिया। आपने तो पहली बात वैराग्य वाली लेनी है कि दधीचि ऋषि किस आनंद में मस्त थे कितना उच्च कोटि का वैराग्य था जिनको इंद्र का सुख भी सूकर कूकर के समान प्रतीत होता है वो संसार के सुखों में कैसे रमण करेगा। भगवान ने बताया है कि इंद्रियों के संयोग से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से जो सुख मिलता है वह आदि और अंत वाला दुख का हेतु है। समझदार वैराग्यवान पुरुष उसमें रमते नहीं है मूर्ख लोग रमते हैं। जितने लोग विषय भोगों में रम रहे हैं वो मूर्ख हैं। ज्ञानी और भक्त इनमें नहीं रमते वे तो परमात्मा के स्वरूप में ही मस्त रहते हैं ब्रह्म में रमण करते हैं निराकार की उपासना करते हैं या आत्मा में रमण करते हैं वे भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान में रमण करते हैं। कितनी विचित्र महिमा है असली वैराग्य है। इसलिए वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है। वैराग्य होने से ध्यान होता है बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योगी युक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। जिसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों की आसक्ति का अत्यंत अभाव है उस पुरुष को ध्यान का विलक्षण आनंद का अनुभव होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए संसार के विषय भोगों में जो सुख है उसका परिणाम बहुत खराब है। संसार के भोग तो दुखी है सुख है ही नहीं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि विवेकी विवेकवान व्यक्ति की दृष्टि में विषय भोग दुख ही है, परिणाम में भी दुख है। सब सांसारिक सुखों का परिणाम दुख ही हो है। भोग रोग का घर है, रोग दुख का घर है। भोगी रोगी होता है, योगी भोगी नहीं होता। ऐसा सोचकर यदि आपको योगी बनना है, महात्मा बनना है, तो संसार के विषयों को जहर के समान त्याग दो। भक्ति के मार्ग में भी यही बात है। नर तन उपाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष ले। मनुष्य शरीर को पाकर जो भोगों में रमता रहता है वह सठ है, मूर्ख है, अमृत के बदले विष लेता है। विषय भोग विष के समान है, परमात्मा अमृत के समान है। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। परमात्मा में मन लगा करके तो देखो, विषयों में तुमने बहुत लगा लिया, उसमें तुमको क्या मिला? अमृत को छोड़कर क्यों विष पीते हो? जहर पीने से आदमी एक बार मरता है, लेकिन विषयों को पीने वाला अनेक बार जन्मतार मरता रहता है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर जो भोगों में समय बिताता है वह अपने समय को मिट्टी में मिला रहा है। विवेकी को उन पर दया आती है। एही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का लाभ विषय भोग नहीं है, स्वर्ग भी बहुत थोड़ा है, वो भी दुख देने वाला है। जब स्वर्ग से गिराया जाता है तो बड़ा दुख होता है। ययाति को गिराया, त्रिशंकु को स्वर्ग से गिराया, कितना दुख हुआ। क्योंकि सुख तो दिखता है, वो दुख ही है। असली सुख तो परमात्मा में है, ज्ञान मार्ग में है, भक्ति मार्ग में है। मनुष्य शरीर उस वास्तविक सुख के लिए मिला है। ऐसे अमूल्य समय को जो विषयों में बिताता है वह पशुओं से भी गिरा हुआ है। पशुओं को तो बिचारों को ज्ञान नहीं है। ज्ञान होकर के भी जो भोजन में, नींद में, सुख में समय बिताता है वो पशु से गया बीता है। जिस तरह पशुओं का रमण है उसी तरह मनुष्यों का रमण है। ये जीवन पशु जीवन हो गया। बहुत सा रुपया हो जाए, खाने को रोटी मिल गई तो क्या है, लड्डू मिल गया तो क्या है, एक मिनट में सब बराबर हो जाएगा। सोने के पलंग पर सोगे तो क्या है, बालू पर सोगे तो क्या है, बहुत रुपए हो जाएंगे तो क्या करोगे, खाने को तो दाल फुल्का ही खाओगे, बात तो इतनी है। दूसरों के सुख को देखकर जलते रहते हैं, कितना अज्ञान है, संताप है। हमारे रुपए बढ़े किंतु पड़ोसी के ज्यादा बढ़ गए सहन नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य संताप से जलता रहता है। एक आदमी लखपति हो गया, मोटर में घूमता है, जब दिवाला निकल जाता है तब उन्हें याद कर करके रोता है। यदि उन सुखों के संस्कार ही नहीं होते तो क्यों रोना पड़ता। स्त्री आज्ञा नहीं मानती तो दुख होता है। रुपए के संग्रह में दुख है, रक्षा करने में दुख है, उनके त्याग में दुख है। दुख अधिक है, सुख केवल बहुत थोड़ा है। व्याख्यान हो रहा है, नींद आ रही है, वहां हमारी वृत्तियों की लड़ाई होती है, मन में दुख होता है। कभी चित्त में क्या पैदा होता है, मन उसको हटाता है, पर ये लड़ाई अच्छी होती है। लड़ो तो अपने से लड़ो, दूसरों के धन को देख करके क्यों करो। हमें संसार के पदार्थों से वैराग्य करना चाहिए। भोगों में वास्तव में सुख नहीं है। परमात्मा के सुख का तो आपने अनुभव नहीं किया, परंतु संसार के सुखों को तो देख लिया ना, अब और क्या देखना बाकी रहा। सांसारिक लोगों की दृष्टि में जो सुख है उससे लाखों गुना सुख वैराग्य में है। वैराग्यवान को त्रिलोकी का सुख कौवे की मीट के समान दिखता है। इत्र फुलेल का आप खूब आदर करते हो, परंतु जब वैराग्य होता है तब ये मूत्र के समान दिखता है। पुष्पमाला पहनाई जाती है तो आप प्रसन्न होते हो, किंतु किसी विरक्त पुरुष को माला पहनाई जाए तो वो समझता है कि जूतों से अपमान हो रहा है। वे इस मार्ग में जाते ही नहीं है। याद रखना चाहिए, वैराग्य में जो सुख है उससे भी अधिक वैराग्य पूर्वक उपरति में है। उपरति क्या होती है? या सिवाय परमात्मा की और कहीं चित्त की वृत्ति जावे ही नहीं, वो उपरति होती है। लोगों को वैराग्य और उपरति का पूरा ज्ञान नहीं, भेद नहीं। वैराग्य है वो संसार के भोगों से, और उपरति होती है केवल भगवान में ही मस्त रहना। उपरति में परमात्मा के स्वरूप में रमण करना होता है। मन से निर्गुण ब्रह्म की बारंबार आवृत्ति होती रहती है, वो रमण है। ये जो रमण का सुख है भगवत प्राप्ति है, मन से रमण है। ये रमण ध्यान जनित सुख से भी अनंत गुणा है। उसके बाद परमात्मा मिलते हैं, उसके आनंद की महिमा कौन गा सकता है। संसार का सारा सुख मिलकर भी उस सागर की एक बूंद के समान नहीं होता। वह ध्यान जनित सात्विक सुख सागर के समान है। परमात्मा की प्राप्ति की तो बात ही क्या है। उसकी बात तो बताई नहीं जा सकती। उसके सागर की उपमा नहीं दी जा सकती। सागर की एक बूंद एवं उस बूंद के एक प्रतिबिंब से भी उसकी बराबर नहीं होती। इतना आनंद है, ऐसे सुख को ठुकरा कर जो विषयों में ही रमण करते हैं, महात्मा लोग मूर्ख कहते हैं। वह सुख अल्पकाल में मिल सकता है। परमात्मा का जो सुख है वो हमको बहुत जल्दी मिल सकता है। हम लोग जो चेष्टा करते हैं, हमारा छिपा हुआ उद्देश्य रहता है कि हमें मान मिले, बड़ाई मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, इससे बड़ा भारी घाटा लग रहा है। मान बड़ाई आदि की इच्छा जिसके अंदर पड़ी है फिर भी वो भजन साधन करता है तो न करने वाले से तो अच्छा ही है, किंतु कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही अच्छा है। अपने को जल्दी काम करना है क्योंकि मृत्यु आ रही है। मान बड़ाई को ठुकरा कर हम सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति करें, आपका प्रेम गाढ़ हो, फिर चाहे भगवान में सकाम भक्ति भी हो कोई बात नहीं, आगे निष्काम हो जाएगी। भोग भोगने की अपेक्षा हठपूर्वक त्याग भी श्रेष्ठ है। वैराग्य से तो स्वतः ही त्याग हो जाएगा, फिर उपरति में तो कहना ही क्या है। ये असली त्याग है, ये परमात्मा की ओर ले जाने वाला रास्ता है। उस वैराग्य का जो फल है वह न त्याग है न ग्रहण है। योगी नाम अपि सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत है। वो साधक मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैराग्य हो जाएगा तो स्वतः साधन तेज होगा। वैराग्य का किसी आश्रम से संबंध नहीं है कि साधुओं को और गृहस्थियों को न हो, चित्त में संसार की इच्छाएं न हो, आसक्ति न हो, यही तो वैराग्य है। ऊपर के बाने से क्या मतलब? वैराग्य असली चीज है। जैसे भी हो वैराग्य वो काम करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाता है उसे कोई भला नहीं कहता है। वो गुंजा के बदले में पारस दे देता है, वह तो पशु से भी गया बीता है। बंदर को बच्चे को पारस दे दो, चिरमी दे दो, तो वे चिरमी को ही पकड़ेंगे क्योंकि उसमें चमक है। ऐसे ही संसार के भोगों में चमक है। परमात्मा का भजन ध्यान पारस है और संसार के भोग चिरमी है। चिरमी देखने में सुंदर लगती है, उसका मुख थोड़ा काला होता है, इसी तरह संसार के भोग भोगते हैं, एक बार तो लाल होते हैं, आखिर में मुंह काला हो जाता है। राजर्षि भरत ने राज्य को लात मार करके जंगल में तपस्या की, बड़े विरक्त थे, परंतु एक मृग में आसक्ति हो गई तो उनको मृग बनना पड़ा। वहां उन्हें ये ज्ञान रहा कि संघ के दोष से तुम्हारी दशा दुर्दशा हो गई। ज्ञान रहने से वृक्षों के झड़े हुए पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करते थे, फिर मर करके ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तब जड़ भरत हो गए। उनका नाम जड़ भरत हो गया। खूब आनंद में मस्त रहते थे, उनकी उपरति की कोई सीमा थी नहीं। एक राजा ने मनुष्य की बलि बोल दी, सेवकों को बोल दिया 200-400 रुपए देकर एक आदमी ले आओ। 200-400 रुपए उस जमाने में, वे जड़ भरत जी को ले आए। देवी के सामने सिर काटने को तैयार हो गए। उनके तो बड़ी उपरति थी, उपरति माने भगवान में मस्ती। वहां चूं भी नहीं की, बकरा भी चूंचा करता है, उन्होंने चूंचा कुछ नहीं की। तलवार उठती है तो देवी तलवार को पकड़ लेती है और जो बलि देने के लिए लाए थे उनका सिर काटने लगी। देवी ने कहा, रे भक्त, तेरी उपरति से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, मांग, तुझे क्या इच्छा है? जड़ भरत जी ने कहा कि मां, यदि वरदान देना चाहती हो तो इन सबको जीवित कर दो। उपरांत ऐसे स्थान में खुलती है, पता चलता है, क्योंकि उनके अंदर दया का गुण प्रकट हो गया। दया भगवान का ही तो गुण है। उनकी उपरति विवेक पूर्ण थी, कहने के लिए जड़ थे, वास्तव में वो ज्ञानियों के भी ज्ञानी थे। उपरति इतने ऊंचे दर्जे की चीज है। सुखदेव जी परीक्षित के यहां जा रहे थे, रास्ते में बच्चे कूड़ा करकट धूल डाल देते, उन्हें पता ही नहीं था। राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे तो लोग पुष्प डाल रहे हैं, तो इनको मान हो रहा है तो ज्ञान नहीं है, अपमान पर तो ज्ञान नहीं है, ऐसी उपरति है। ज्ञान तो उनकी चरणों की धूली से ही प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी एक मार्ग से गए, पीछे पीछे वेदव्यास जी जा रहे थे। स्त्रियां स्नान कर रही थी, वेदव्यास जी को देखकर स्त्रियां लज्जा करने लगी। व्यास जी ने पूछा, अरे क्यों लज्जा करती हो? मेरा जवान बेटा गया, तुमने लज्जा नहीं की, मेरे से लज्जा करते हो? मैं तो बुढ़ा हूं। स्त्रियों ने कहा, उन्हें तो स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, आपको ज्ञान है इसलिए लज्जा आई है। ज्ञान के मार्ग में वैराग्य की विशेष आवश्यकता है। इसलिए संसार के विषयों से वैराग्य करना चाहिए। हम संसार के भोग अनंत जन्मों से भोगते आ रहे हैं, अब भाई जीवन का थोड़ा सा समय बाकी है, वो तो प्रभु की अर्पण कर दो, उनकी शरण हो जाओ और कहो हे नाथ संभालो संभालो, अब ये नाव डूबने वाली है, संभालो नाथ खतरा आ रहा है। किसी ने कहा है, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को, बारे बार विषय फलखात अघात न जात सुधारस फीको, आन को औसन तजी अभिमान कही सुन कान भयोसी पीको, पाय परम पद हाथ सुजात सो गई अब राख रही को। मनुष्य का शरीर पार लगी हुई नौका है, नौका यदि किनारे पर आ गई अब आपको पार करने में क्या जोर आया, एकदम नजदीक आए हुए हो लेकिन भोगों के अंदर वापिस चले जाने पर नदी में डूब जाओगे। संत महात्मा रूपी केवट मिल जाए पार लगा देंगे, स्वयं प्रभु केवट के रूप में मिल जाए फिर कहना ही क्या है। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण है, वासु सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याति ब्रह्म सनातनम। भगवान के जब जीव शरण हो जाता है उसके कोई पाप बाकी नहीं रहते हैं। अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि, भगवान की शरण से निर्गुण की प्राप्ति सगुण की प्राप्ति सब हो जाती है, सबसे उत्कृष्ट साधना है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुने ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वे में प्रविष्टुम च परंतप है। साक्षात दर्शन ज्ञान से नहीं होता है, ज्ञान से परमात्मा को जान सकता है, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। भक्ति से जब चीज मिलती है वो अलौकिक है, बिना भक्ति के भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त करोगे। अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन होता है, गुणातीत हो तो भी अनन्य भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति सबके काम की चीज है, जाति से भी नीच हो आचरणों से नीच हो भक्ति में सभी पात्र हैं। सब ज्ञान के पात्र नहीं होते, ज्ञान के लिए वैराग्य विवेक होना चाहिए। भक्ति में न जाति की न अवस्था की न ज्ञान की, वहां तो एक ही चीज है जिसका नाम कहो प्रेम। बस जानू एक भक्ति कर नाता, संसार से वैराग्य एवं प्रभु में प्रेम, इसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। नहीं नहीं इसके लिए तो मर मिटना चाहिए, संसार में आसक्ति हटाकर प्रभु में प्रेम करना चाहिए। प्रभु में अनुरागी प्रेम है, उसे प्रीति कह दो प्रेम कह दो मन में जो कह दो होना ये चाहिए। राम।